एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं।
जी नमस्कार।
सवाल ये कि हम यानी इंसान आखिर बने कैसे? ये लाखों साल का सफर है ना?
हाँ बिल्कुल, एक बहुत लंबा और उलझा हुआ सफर। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पुरखे कौन थे, कैसे बदले।
और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं प्रोफेसर बर्नार्ड वुड की किताबों का, ह्यूमन इवोल्यूशन, और उसका एक छोटा संस्करण भी है, ह्यूमन इवोल्यूशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
जी, ये दोनों ही किताबें इस मुश्किल विषय को समझने में काफी मददगार हैं।
और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, सही कहा ना? ये जानने से हमें आज के बारे में भी कुछ पता चलता है।
बिल्कुल, हम कौन हैं, हम में इतनी विविधता क्यों है, फिर भी हम सब एक कैसे हैं, प्रकृति में हमारी जगह क्या है, ये सब सवाल कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं।
हाँ, और वो जो एक आम धारणा है ना कि बंदर से धीरे धीरे सीधा होता हुआ इंसान बन गया, एक सीढ़ी जैसी,
हाँ, वो मशहूर तस्वीर।
बिल्कुल वही। लेकिन बर्नार्ड वुड कहते हैं कि असल कहानी इतनी सीधी है ही नहीं।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो इसे एक घनी उलझी हुई झाड़ी की तरह बताते हैं। कई शाखाएं निकली, कुछ बढ़ी, कुछ खत्म हो गईं।
तो आज इसी झाड़ी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लें, बर्नार्ड वुड।
जरूर, प्रोफेसर बर्नार्ड वुड एक जाने माने पूरा मानव शास्त्री हैं, मतलब पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट,
यानी वो जो पुराने इंसानी फॉसिल्स पर स्टडी करते हैं।
हाँ, वो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और मानव उत्पत्ति के क्षेत्र में, मतलब हम इंसान कैसे बने, इसके बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते हैं।
और उनका अनुभव तो कमाल का है, दशकों का शोध, खासकर पूर्वी अफ्रीका में। जी हाँ, केन्या, इथियोपिया, ये वो जगह हैं जहाँ से मानव विकास के सबसे अहम और पुराने जीवाश्म मिले हैं। कुबीफोरा, ओल्ड वाइगोज जैसी जगहों पर उन्होंने काफी काम किया है।
और वो सिर्फ फॉसिल्स ही नहीं देखते, बल्कि जानवरों के शारीरिक बनावट की तुलना यानी कंपैरेटिव एनाटॉमी और जीवों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी, इसमें भी माहिर है।
सही कहा, और उनका नजरिया भी खास है। एक तो वो मेडिकल साइंस, एनाटॉमी और फॉसिल्स सबको जोड़कर देखते हैं।
अच्छा,
और दूसरी बात, टैक्सोनॉमी में, मतलब जीवाश्मों को अलग अलग प्रजातियों में बांटने में, उन्हें स्प्लिटर माना जाता है।
स्प्लिटर, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, मतलब अगर उन्हें दो जीवाश्मों में थोड़े भी अलग लक्षण दिखें तो वो उन्हें अलग प्रजाति मानने की तरफ ज्यादा झुकते हैं, बजाय ये सोचने के कि शायद ये एक ही प्रजाति के दो अलग सदस्य हों।
अच्छा, तो वो भिन्नताओं पर ज्यादा जोर देते हैं। जी, और इसी से उनकी वो झाड़ीदार पेड़ वाली बात को और मजबूती मिलती है कि इतिहास में कई तरह की इंसानी प्रजातियां साथ साथ थीं। और एक और अहम बात, वो मुश्किल विषयों पर भी बहुत संतुलित और वैज्ञानिक नजरिया रखते हैं। वो ये नहीं जताते कि सब पता चल गया है, वो मानते हैं कि विज्ञान में अनिश्चितता और बहस की गुंजाइश हमेशा रहती है।
तो फिर इन किताबों का असल मकसद क्या है? वुड क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, वुड का मकसद है मानव विकास की एक ऐसी तस्वीर पेश करना जो वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित हो, जो मौजूदा जानकारी के हिसाब से सही हो।
और वो ये भी साफ करते हैं कि क्या पता है और क्या नहीं है ना?
बिल्कुल, कहां अनिश्चितता है ये भी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो उस आम सोच को चुनौती देते हैं कि मानव विकास एक सीधी रेखा में हुई तरक्की है।
हाँ, वो मार्च ऑफ प्रोग्रेस वाली बात कि हम ही सबसे उन्नत है और विकास का अंत है।
सही, वुड का केंद्रीय तर्क यही है कि मानव विकास सीधी सीढ़ी नहीं, बल्कि एक जटिल शाखाओं वाली झाड़ी है। इतिहास के ज्यादातर समय में एक ही वक्त पर कई तरह की होमिनिन प्रजातियां थीं,
और उनमें से ज्यादातर विलुप्त हो गईं।
तो हमारा बचना, मतलब होमो सेपियंस का, वो तय नहीं था।
बिल्कुल नहीं,
ये किस्मत, माहौल के हिसाब से ढलने की क्षमता और दूसरी प्रजातियों के विलुप्त होने का मिलाजुला नतीजा है, आकस्मिकता जिसे कहते हैं।
ये किताबें तो हमें करीब 70 लाख साल के सफर पर ले जाती हैं, सोचिए।
जी, करीब 7 मिलियन वर्ष, बिल्कुल शुरुआती संभावित पूर्वजों से लेकर हम यानी आधुनिक मानव के उभरने और पूरी दुनिया में फैलने तक।
और इसमें वो सारी जरूरी बातें, फॉसिल कैसे मिलते हैं, उनकी उम्र कैसे पता चलती है, दो पैरों पर चलना,
हाँ, बाइपेडलिज्म, बड़े दिमाग का विकास और अलग अलग होमिनिन प्रजातियों के बीच रिश्ते कैसे थे, ये सब कुछ।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। वुड शुरू कहाँ से करते हैं?
वुड पहले लीनियस और डार्विन जैसे वैज्ञानिकों की बात करते हैं जिन्होंने विकास के विचार की नींव रखी। फिर वो बताते हैं कि पुरा मानव शास्त्री काम कैसे करते हैं,
जैसे वो फॉसिल बनने की प्रक्रिया, टैफोनोमी।
हाँ, टैफोनोमी यानी मरने के बाद किसी जीव के अवशेष कैसे बदलते हैं, कैसे पत्थर बनते हैं, और फिर उनकी उम्र पता करना।
हाँ, ये उम्र वाला मामला तो बहुत जरूरी लगता है। कैसे पता करते हैं?
इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक है सापेक्ष डेटिंग, रिलेटिव डेटिंग, जैसे चट्टानों की परतें देखकर अंदाजा लगाना कि कौन सी परत पुरानी कौन सी नई।
अच्छा, लेयर्स के हिसाब से।
जी। और दूसरा है निरपेक्ष डेटिंग, एब्सोल्यूट डेटिंग, जिससे लगभग पक्की उम्र पता चलती है। इसमें पोटेशियम आर्गन या कार्बन 14 डेटिंग जैसे तरीके आते हैं। वुड इस पर जोर देते हैं कि यह समझना जरूरी है कि हम जो जानते हैं वो हमें पता कैसे चला, सबूत कैसे मिलता है, उसे परखा कैसे जाता है।
ठीक है, तो सबूत की बात हो गई, अब आते हैं सबसे पुराने पूर्वजों पर। कौन थे वो?
वुड हमें ले जाते हैं करीब 60-70 लाख साल पहले। उस समय के कुछ संभावित होमिनिन जैसे साइलांथ्रोपस, ओरोरिन, आर्डिपिथेकस के जीवाश्म मिले हैं।
लेकिन वो तो बहुत कम और टूटे फूटे होंगे ना?
हाँ, काफी खंडित हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने पुराने जीवाश्मों में भी दो पैरों पर चलने यानी बाइपेडलिज्म के कुछ संकेत मिलते हैं।
70 लाख साल पहले दो पैरों पर चलने के संकेत, वो कैसे?
जैसे साइलेंथ्रोपस की खोपड़ी में वो छेद फोरमेन मैग्नम, जहां से रीढ़ की हड्डी जुड़ती है, वो थोड़ा आगे की तरफ है। ये सीधे खड़े होने का संकेत है।
अरे वाह।
वुड बताते हैं कि ये मानव विकास का पहला बड़ा कदम था। बड़ा दिमाग तो बहुत बाद में आया, लाखों साल बाद।
मतलब पहले सीधे खड़े हुए, फिर दिमाग बड़ा हुआ, ये तो पूरी सोच बदल देता है। अच्छा, इनके बाद कौन आए?
इनके बाद आता है एक बड़ा और काफी विविध समूह, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन। ये करीब 40 लाख से 20 लाख साल पहले तक थे।
ऑस्ट्रेलोपिथेसीन, इनमें भी अलग अलग तरह के थे?
हाँ, काफी। कुछ हल्के शरीर वाले ग्रसाइलिक थे, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसी में वो मशहूर लूसी आती है।
हाँ, लूसी, उसका नाम तो सुना है। क्या खास था लूसी में?
लूसी ऑस्ट्रेलोपिथिकस मोज़ेक एवोल्यूशन का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब कुछ चीजें बदली, कुछ नहीं।
मोज़ेक एवोल्यूशन?
हाँ, यानी उसका निचला शरीर तो दो पैरों पर चलने के लिए काफी अनुकूलित था, लेकिन ऊपरी शरीर जैसे लंबी बाहें और छोटा दिमाग, वो अभी भी बंदरों जैसा था।
अच्छा, मिला जुला रूप था। और दूसरे वाले कौन थे?
रोबस्ट।
हाँ,
रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथिज्म, जिन्हें पैरंथ्रोपस भी कहते हैं, ये एक अलग शाखा थी। इनके दांत बहुत बड़े थे, जबड़े मजबूत, शायद बहुत सख्त खाना खाते थे।
और इनका क्या हुआ?
ये शाखा विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। ये फिर से वुड की वो झाड़ी वाली बात को पुख्ता करता है। कई शाखाएं निकली और कई खत्म भी हो गई।
ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन के बाद हमारे अपने जीनस होमो की बारी आई।
हाँ, लगभग 2.5 लाख साल पहले। और ये भी थोड़ा विवादास्पद मामला है। पहली प्रजाति जिसे अक्सर होमो में रखते हैं वो है होमो हैबिलिस।
हैंडीमैन, औजार बनाने वाला।
जी, क्योंकि इनके फॉसिल्स के साथ शुरुआती पत्थर के औजार, ओल्डोवन औजार मिले हैं। लेकिन वुड और कुछ वैज्ञानिक सवाल उठाते हैं।
क्यों, औजार तो मिले ना?
हाँ, लेकिन उनका शरीर और दिमाग अभी भी काफी कुछ ऑस्ट्रेलोपिथेसीन जैसा था, बस दिमाग थोड़ा सा बड़ा था। तो बहस यह है कि क्या सिर्फ औजार बनाना ही होमो कहलाने के लिए काफी है?
ये तो मुश्किल सवाल है। मानव की परिभाषा ही बदलती रहती है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये बदलाव कितना धीरे धीरे और धुंधला सा था, कोई साफ लकीर नहीं है।
तो फिर वो पक्का वाला बदलाव कब आया जिसे हम निश्चित रूप से होमो कह सकें?
वो बड़ा कदम था होमो इरेक्टस का आना, करीब 19 लाख साल पहले अफ्रीका में। कुछ वैज्ञानिक अफ्रीकी रूपों को होमो इरगास्टर कहते हैं।
होमो इरेक्टस, इसमें क्या खास था?
केन्या में मिला तुर्काना बॉय का कंकाल दिखाता है कि इनका शरीर हम आधुनिक इंसानों जैसा हो गया था। लंबी टांगें, छोटी बाहें, लंबी दूरी तक चलने के लिए अनुकूलित।
और दिमाग भी बड़ा हुआ?
हाँ, दिमाग भी पहले के होमिनिन से काफी बड़ा था और तकनीक भी बेहतर हुई।
एशुलियन हैंड एग्स, वो वाले।
जी, एशुलियन तकनीक, हाथ की कुल्हाड़ी जैसे ज्यादा परिष्कृत औजार। और सबसे बड़ी बात,
अफ्रीका से बाहर निकलना।
बिल्कुल, ये पहली होमिनिन प्रजाति थी जो अफ्रीका से बाहर फैली। जॉर्जिया से लेकर इंडोनेशिया तक इनके जीवाश्म मिले हैं। ये ग्लोबल विस्तार की शुरुआत थी।
वाओ, ये सच में बड़ा मील का पत्थर था। अच्छा, इसके बाद आते हैं नियांडरथॉल्स और बाकी सब?
हाँ, होमो इरेक्टस के बाद और हमारे यानी होमो सेपियन से पहले बीच के दौर में कई तरह के होमिनिन थे। इन्हें कभी कभी आर्केक मानव कह देते हैं। करीब 5 लाख से 40 हजार साल पहले तक।
इनमें सबसे मशहूर तो नियांडरथॉल ही हैं, वो गुफा मानव वाली इमेज।
हाँ, उस इमेज को भूलना होगा। नियंडरथल काफी बुद्धिमान थे, ठंडे मौसम के अनुकूल, शरीर मजबूत, दिमाग हमसे भी थोड़ा बड़ा था।
अच्छा,
वो भी उन्नत औजार मॉस्टेरियन बनाते थे, शायद आग का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को दफनाते भी थे, ऐसे कुछ सबूत हैं।
और नियंडरथल के अलावा
अल्शिया में डेनिसोवंस का पता चला है,
जिनके बारे में ज्यादातर डीएनए से पता चला है, और होमो हेडेलबर्जेंसिस भी थे, जो शायद नियंडरथल और हमारे साझे पूर्वजों।
मतलब हम अकेले नहीं थे उस समय।
बिल्कुल नहीं, हमारे इतिहास के बड़े हिस्से में धरती पर कई तरह के इंसान एक साथ रह रहे थे। होमो सेपियंस का अकेला होना तो हाल की बात है।
तो फिर हम होमो सेपियंस कब और कैसे आए और बाकी सब कहां गए?
अब आते हैं कहानी के मौजूदा हिस्से पर, आधुनिक मानव। ज्यादातर वैज्ञानिक आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल मानते हैं,
यानी हम अफ्रीका में विकसित हुए।
हाँ, सबसे पुराने होमो सेपियंस जैसे जीवाशुम अफ्रीका में ही मिले हैं, करीब 2 से 3 लाख साल पुराने, और जेनेटिक सबूत भी यही कहते हैं।
और फिर अफ्रीका से बाहर फैले।
जी, करीब 60-70 हजार साल पहले एक छोटा समूह अफ्रीका से बाहर निकला, और आज अफ्रीका के बाहर के सभी इंसान उसी समूह के वंशज हैं।
हमारी क्या खासियत थी, हम कैसे अलग थे?
माना जाता है कि हमारे पास शायद ज्यादा जटिल तकनीक थी, बेहतर योजना बनाने की क्षमता थी, सांकेतिक व्यवहार, कला, गहने और शायद भाषा का विकास, ये बड़े फर्क रहे होंगे।
और बाकी मानव प्रजातियों का क्या हुआ?
लगता है ज्यादातर धीरे धीरे विलुप्त हो गईं, शायद प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए या सीधे टकराव हुए। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है।
वो क्या?
जेनेटिक सबूत बताते हैं कि जब हमारे पुरखे अफ्रीका से बाहर यूरोप और एशिया पहुंचे, तो उनका सामना नियंडरथल और डेनिसोवन से हुआ, और उनके बीच सिर्फ संघर्ष ही नहीं बल्कि इंटरब्रीडिंग भी हुई।
इंटरब्रीडिंग मतलब?
हाँ, मतलब उनके बच्चे भी हुए, इसीलिए आज भी कई गैर अफ्रीकी लोगों के डीएनए में नियंडरथल और डेनिसोवन्स के थोड़े जीन्स मिलते हैं।
अरे वाह, ये तो कमाल है। तो हम पूरी तरह अलग नहीं है, उनमें से कुछ अंश हम में भी हैं।
बिल्कुल, हम एक तरह से हाइब्रिड हैं।
तो अगर हम वुड के काम से कुछ मुख्य संदेश निकालें तो वो क्या होंगे? पहला तो वही झाड़ी वाला मॉडल।
हाँ, सबसे अहम विकास एक सीधी सीढ़ी नहीं, एक उलझी हुई झाड़ी है, हम उसकी अकेली बची टहनी हैं।
दूसरा, सबूतों का अधूरापन।
जी,
फॉसिल रिकॉर्ड एक पहेली जैसा है जिसके बहुत सारे टुकड़े गायब हैं, इसलिए व्याख्या और बहस की गुंजाइश हमेशा रहती है, विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है।
तीसरा, बाइपेडलिज्म, यानी दो पैरों पर चलना।
हाँ, ये पहला बड़ा कदम था जिसने हाथ आजाद किए, ये बड़े दिमाग से लाखों साल पहले हुआ।
चौथा,
वो मोज़ेक इवोल्यूशन वाली बात।
बिल्कुल, इंसानी लक्षण एक साथ नहीं आए बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग रफ्तार से विकसित हुए।
और पांचवा,
आकस्मिकता, हमारा अस्तित्व कोई तयशुदा बात नहीं थी, हम भाग्यशाली सर्वाइवर हैं, ये विनम्रता सिखाता है ना?
सच में। और छठा,
मानव की परिभाषा की मुश्किल।
हाँ, होमोजीनस को परिभाषित करना, ये बताना कि कहाँ एक प्रजाति खत्म होती है और दूसरी शुरू, ये बहुत मुश्किल है। ये एक धुंधला संक्रमण था। वुड के कुछ विचार सच में सोचने पे मजबूर करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि फॉसिल रिकॉर्ड पहेली जैसा है जिसके टुकड़े गायब हैं, ये वैज्ञानिक विनम्रता दिखाता है।
बिल्कुल, और ये भी कि दो पैरों पर चलना कोई एक घटना नहीं बल्कि लाखों साल की प्रक्रिया थी, अलग अलग प्रजातियों ने इसे अलग अलग तरीके से साधा।
और ये कि हम विकास का लक्ष्य नहीं बस एक नतीजा है, असाधारण पर अनिवार्य नहीं।
सही, और वो जो कहते हैं कि हमारी कहानी 3 जगह लिखी है, जीन्स, हड्डियां और पत्थर, औजार, तीनों को साथ पढ़ना होगा।
हाँ, अलग अलग विज्ञानों को मिलकर काम करना होगा। और शायद सबसे जरूरी बात
कि आज दुनिया के सभी इंसान हाल के अफ्रीकी पूर्वजों को साझा करते हैं, हम सब एक बड़ा अफ्रीकी परिवार हैं।
ये बात आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण है, यहीं से हम इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन पे आते हैं।
जी, सबसे पहली बात तो यही है, मानव एकता, ये नस्लवाद का वैज्ञानिक खंडन है, हम सबका मूल एक है।
दूसरा, पर्यावरण परिवर्तन का सबक।
हाँ, कैसे अतीत में पर्यावरण बदलावों ने प्रजातियों को प्रभावित किया, ये आज जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक चेतावनी है, अनुकूलन और विलुप्ति की कहानियां।
तीसरा, विज्ञान कैसे काम करता है ये समझना।
बिल्कुल, अनिश्चितता को स्वीकारना, सबूतों का मूल्यांकन करना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये गलत सूचना के दौर में बहुत जरूरी है।
चौथा, हमारे अस्तित्व की आकस्मिकता से विनम्रता सीखना।
जी, और अपने जीवन और अपनी प्रजाति के प्रति जिम्मेदारी महसूस करना।
और पांचवा, स्वास्थ्य से जुड़ा पहलू।
हाँ, हमारा शरीर जिस माहौल के लिए बना था वो आज के माहौल से बहुत अलग है, ये मिसमैच कई आधुनिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझने में मदद कर सकता है, जैसे आहार से जुड़ी बीमारियां।
तो अगर हम सब समेटें तो बर्नार्ड वुड के काम से सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे लिए तो ये जटिलता और आकस्मिकता है, कहानी सीधी नहीं है।
हाँ, और मुख्य बातें जो याद रखनी चाहिए, हमारी हालिया अफ्रीकी जड़ें, मानव एकता, विकास का झाड़ीदार मॉडल और हमारे अस्तित्व का इत्तेफाक होना, हमारा अकेलापन एकमात्र होमिनिन प्रजाति हालिया और असामान्य है।
वुड का काम हमें याद दिलाता है कि विज्ञान ही अपनी जड़ों को समझने का सबसे अच्छा जरिया है, भले ही कहानी अधूरी और बदलती रहे।
बिल्कुल, और ये सोचना भी दिलचस्प है जैसा आपने कहा कि अगर इतिहास थोड़ा अलग होता, अगर नियंडरथल या डेनिसोवंस भी बच जाते तो दुनिया कैसी होती?
हाँ, कैसा होता वो मंजर, क्या हम साथ रह पाते? खैर, ये सोचने के लिए छोड़ देते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।